Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's M-E-N-T-Z-A.
जी वसीम जी नमस्कार.
नमस्कार.
कैसे हैं आप?
बढ़िया.
ऋचा जी जुड़ गई हमारे साथ. वेलकम ऋचा जी.
हमारे कहानीकार अभी तक नहीं है.
जी बढ़िया. जी हाँ वसीम जी हमारे कहानीकार अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ.
सुजॉय जी. सुजॉय तो नीचे आ चुकी.
सुजॉय जी ने तो नहीं भेजी स्टोरी हमें, है सुजॉय जी? मैं तो चाह रही थी सुजॉय जी से स्टोरी आए हमारे पास.
बहुत अच्छी था दीपिका मैम.
थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हाँ जी मैंने. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो श्रुति. वसीम जी एक बार मैं शायद इनवाइट भेज दूं विश्व दीपक जी को.
आप भेज दीजिए, मैं शुरू करता हूँ.
जी
दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग. हम हाजिर हैं मंजा पर कहानियों का एक बेहद खास प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है कहानी बुनो. और आज है कहानी बुनो का 13वां एपिसोड. मैं हूं वसीम अकरम और मेरे साथ हैं प्रोग्राम क्रिएटर दीपिका जी, आज के कहानीकार विश्व दीपक जी और ऋचा जी. बाकी तमाम हमारे सुनने वाले अजीज व मोहतरम लोग सब मौजूद हैं. आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम कहानी बुनो में, जहां हम सुनते हैं सुनाते हैं बेहतरीन कहानियां और बात करते हैं कहानियों की बुनाई के बारे में. दोस्तों आज है नानी दादी की कहानियों का एपिसोड. गर्मी का मौसम चल रहा है और बच्चे अपने नानी दादी के यहाँ जा चुके हैं, वहां कहानियां सुन रहे होंगे और हम लोग कहानी पर एपिसोड कर रहे हैं. आज मैं सुबह से मैं इस कश्मकश में था कि नानी दादी की कहानियां हमारी जिंदगी में कितने मायने रखती हैं और कहानियां क्या बच्चों को क्यों सुनानी चाहिए. हम जिस भागदौड़ भरी जिंदगी के साथ फ्लैट नुमा दड़बों में सिंगुलर फैमिली में रहने लगे हैं ना, उनमें तो मुमकिन ही नहीं है कि बच्चे नानी दादी की कहानियों का तसव्वुर भी कर सके. इसलिए उनके लिए टीवी या मोबाइल या दूसरे डिजिटल खिलौने मौजूद हैं. टीवी पर और मोबाइल में हजारों कार्टून आते हैं जिन्हें बच्चे बड़े चाव से देखते हैं. मैं ये सोच रहा था कि क्या नानी दादी की गैर मौजूदगी में, जैसा कि हमारे शहरों के फ्लैट्स में लोग रहते हैं, गांव में दादी नानियां मौजूद हैं लेकिन शहर में नहीं है. मैं यही सोच रहा था कि क्या नानी दादी की गैर मौजूदगी में हमारी जो सिंगुलर फैमिलीज हैं अपने बच्चों को कार्टून की शक्ल में कहानियां नहीं सुनाती हैं. तो इसका जवाब भी यही आया कि यस, नानी दादी के ऑप्शन में हमने डिजिटल मशीनों को चुन लिया है. नानी दादी तो है नहीं, वो तो गांव में है, इसलिए हमने डिजिटल मशीनों को चुन लिया है, कंप्यूटर को चुन लिया है, मोबाइल को चुन लिया है, टीवी को चुन लिया है और बच्चों को डिजिटल बनाए जा रहे हैं. फिर सवाल उठता है कि क्या फिर जिस तरह से हम अपने बचपन में कहानियां सुनते वक्त नानी दादी से या नाना दादा से सवाल पूछ लिया करते थे, आज के बच्चे ऐसा कर पा रहे हैं डिजिटल युग में? तो जवाब यही आता है कि बिल्कुल नहीं. कार्टून देखकर उनके मन में सवाल उठता भी हो तो वो माँ बाप से पूछते हैं. दादी नानी तो है नहीं, लेकिन क्या उन्हें जवाब मिलता है अपने माँ बाप से? तो इसका भी जवाब यही आता है कि नहीं, क्योंकि माँ बाप ने अपनी राहत के लिए, जरा से सुकून के लिए अपने बच्चों के हाथों में इन डिजिटल खिलौनों को पकड़ा दिया है. फिर भला वो जवाब क्या और क्यों देते, है कि नहीं? बस यही आकर मेरी कश्मकश कुछ दूर हुई कि घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का होना कितना जरूरी है और नानी दादी से कहानियां कितना जरूरी है सुनना. नानी या दादी अपने नाते पोतियों को सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, मुझे ऐसा लगता है, बल्कि अपनी कहानियों के साथ उनका मानसिक विकास भी करती हैं, जैसा कि मेरा मानसिक विकास हुआ. बच्चों की दिमागी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें जिंदगी के हर मौजूदात पर, हर टॉपिक पर कहानियां सुनाई जाएं, ताकि वो न सिर्फ अपने मनोरंजन कर सकें बल्कि दुनिया भर की सभ्यता, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, रिश्ते नाते, दुख तकलीफ, हंसी चिठोली, हंसना रोना वगैरह को भी महसूस कर सके. और ये सब चीजें कहानियों में मौजूद हैं, मिलती हैं हमें. बच्चे खेल खेल में जितना कुछ सीखते हैं उतनी ही कहानियों के जरिए भी बहुत कुछ सीखते हैं और बेहतर है और कहानियों के जरिए बेहतर इंसान बनने की कोशिश भी करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कहानियां सुनने से बच्चों की वोकैबुलरी भी तैयार होती है, नए नए शब्द उनको हासिल होते हैं, उनके उनके दिमाग में नए नए शब्द, नए नए वाक्य आते हैं और सवाल पूछने की समझ भी बढ़ने लगती है। हर कहानी से बच्चे कुछ नया तो सीखते ही हैं, बल्कि कुछ पूछने भी लगते हैं। मुझे दादी के सुनाए बहुत से जुमले याद हैं। मसलन एक दफा उन्होंने कहा था कि लबराहू आदमी काम नहीं करता, खाली हाथ मुंह चलाता रहता है। तब ये जुमला मेरी समझ में नहीं आया था कि दादी ने ऐसा क्यों कहा था और किसके लिए कहा था। अचानक कोई ऐसी बात रही होगी और मैंने ये जुमला सुन लिया था। जब बड़ा हुआ तो एक शेर पढ़ा, उसकी बातों में न जा कि वो कहता क्या है, उसकी बातों में न जा कि वो कहता क्या है, उसके कदमों की तरफ देख किधर जाता है। ये शेर पढ़ने के बाद मुझे मेरी दादी के उस जुमले का मतलब समझ में आया। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मेरे अदब फन में, मेरे साहित्य में या फिर मेरी कहानियां लिखने में अगर मेरी नानी दादी की वो फनकारी ना होती तो क्या मैं कहानियां लिख पाता। शायद उतनी शिद्दत भरी कहानियां नहीं लिख पाता। मुझे लगता है कि नानी दादी से बेहतरीन स्टोरी टेलर तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना दीपिका जी। बहरहाल इस टॉपिक पर तो मैं पूरी रात बड़बड़ करता रह जाऊंगा, इसलिए पहले सुनते हैं आज की कहानी जिसे सुनाएंगी अपनी खूबसूरत आवाज और अल्फाज में दीपिका जी। इसे लिखा है,
शुक्रिया वसीम जी, विश्व दीपक जी की कहानी। और आपने बिल्कुल सच कहा कि दादी नानी की कहानियों में बहुत सी नसीहतें, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें जिंदगी भर की सीख दे जाती हैं। दादी नानी अपने जिंदगी के तजुर्बों को किस तरह पिरोकर परोस देते हैं कहानी के रूप में, हमें पता ही नहीं चलता, है ना, क्योंकि उनके पास इतनी बातें होती हैं कि हर बात की कहानी होती है उनके पास।
बिल्कुल दीपिका जी, उनकी जो जिंदगी होती है अपने आप में एक तवील बहुत बड़ी तजुर्बे का खजाना होता है। तो उसमें से जब वो कहानियां सुनाती हैं तो अपने खजाने में से, यानी तजुर्बे के जो खजाने हैं उसमें से वो कल्पना का पुट गढ़ देती हैं, रच देती हैं। तो एक छोटी सी कहानी भी एक नसीहत से भरी कहानी हो जाती है, सीख वाली कहानी हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा।
तो लगता है कि अभी लोकोक्ति और मुहावरे उसमें होते हैं जो शायद हमने किताबों में भी ना पढ़े होंगे, तो हमें दादी नानी की कहानियों में मिल जाते हैं। तो आज की कहानी कुछ बहुत ही अलग सी है जो विश्व दीपक जी ने लिखी है, हमारे टॉपिक से मेल खाती है, पर जिस तरह की और कहानियां आई थी उससे बिल्कुल ही अलहदा है। तो हमें ये कहानी बहुत ही पसंद आई वसीम जी।
तो मुझे इस कहानी को रखने के लिए इसीलिए तड़प जगी कि एक अलहदा तरीके से लिखी गई कहानी है
जी,
तो थोड़ी सी एडिटिंग की जरूरत तो पड़ी। बहरहाल कहानी बहुत खूबसूरत बन पड़ी है और इसको आप जल्दी से, अब देर ना करें, बिल्कुल अब सुनाएं।
जी जी बिल्कुल। तो विश्व दीपक जी की कहानी का शीर्षक है दादी जी। जिंदगी खाब के जैसे चलती तो क्या बात होती, लेकिन यहां तो दोनों को एक दूसरे के बरक्स रहने की होड़ मची है। का बताएं बेटा, वो दौर ही अलग था। हम 9-10 साल की रही होंगी जब बाबूजी से हमने चोरी छिपे सुना कि उम्र हो गई है, इसकी शादी कर दी जाए। शादी शादी ब्याह गुड्डे गुड्डिया तक तो समझ आता है, पर हमारी शादी भी होगी, ये तो हम कभी सोचे ही नहीं। मिट्टी वाला दूल्हा, वो तो मुंह के पड़ा रहता था, हम जैसे बोले वैसे उछल कूद मचाता था, पर असलियत का दूल्हा, बाप रे, काहे जाने नाक में दम ना कर दे। भाई हमको तो गोलू मोलू प्यारा और शांत सा चाहिए था। सैतनिया किए तो हम उसको छोड़ के अपने घर भाग जाएंगे, हम तो किसी के नखरे नहीं उठाने वाले। इतने नखरे ले थे हम बेटा, कितना कुछ सोच लिए थे हम, पर फिर सोचे कि इस उम्र में अपना घर छोड़ के किसी और के भरोसे कहीं और काहे जाना। बाबूजी को इतनी हड़बड़ी काहे है। लेकिन बेटा उस वक्त बड़े बुजुर्ग से कोई सवाल जवाब नहीं ना करता था, हम तो उनके सामने जाने से भी डरते थे। फिर हुआ वही जो विधान ने रचा था, मुश्किल से 4 जमात पढ़े थे, बस वही पढ़ी रह गई। अगले 6 महीना में तुम्हारे दादा हमको बिहाने ले आए। लेकिन दादी, दादू भी तो बच्चे ही रहे होंगे ना, वो भी
पर दादा जी के सामने कुछ न बोले। उनको बचपन की शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। अरे बेटा, इतने बच्चे भी ना थे, वो शादी हो रही थी उनकी, उम्र में अंतर था। वो 16 के थे तब, कानून वाली उम्र से 2 साल कम। देश नया नया आजाद हुआ था, कोर्ट कचहरी तो खुदाए कानून समझे बूझे में लगी थी। सो हो गया हमार बिया बिना किसी रोक टोक के। मजे की बात जानत हो, 16 की उम्र में ही इनका दूसरा बिया था। ये पहली वाली बिया के गौना होकर आई नहीं, और आए वाले दिन आते आते हैजा से चल बसी। ए फिर कुंवारे हो गए। क्या बोल रही हो दादी, इतनी बड़ी बात हुई आपके साथ, कोई जानता है? अरे छोटी सी बात, तब के लिए इतनी बात बड़ी नहीं थी ये बेटा। हमको आज भी याद है, हम गौना होकर आई थी, 4-5 कोस पर था ससुराल। ससुर जी और ही हमको बैलगाड़ी से लेने आए थे। गांव में बैलगाड़ी पे चढ़ के कभी कभार मेला देखने तो जाते थे। हमको आज भी याद है, कितना आनंद आता था। लेकिन इतनी दूर कुछ खास बनकर जाना, वो उमंग और खुशी समझाना आसान नहीं है। हाँ, ये दुख जरूर था कि घर और घर के लोगों से दूर जा रहे हैं। लेकिन बाल मन तो हवा मिठाई के सामने गहरी चोट भी भूल जाता है। सो इधर भी सुख दुख का बंटवारा इसी हिसाब से हो गया। मामी और बुआओं ने समझाया, अपना जो संभालो, नहीं तो निर्लज मान लेंगे लोग। समाज का लिहाज, लोक लाज भी तो सीखना था ना बेटा। हम अम्मा के आंचल में लिपटा के बैलगाड़ी में चढ़ा दी गई। साथ में थे ये और आगे गाड़ीवान के साथ ससुर जी। सच बोले तो हम कई बार घूंघट उठा के देखे तो ससुर जी की बड़ी बड़ी मूछे देखकर दुबक जाते थे। फिर झरोके से कभी इनको देखते, कभी पेड़ पौधा को घूरते, बस पहुंच गए ससुराल। अपना घर छोड़ किसी और के घर में आके रहना, ये सोचना ही नामुमकिन है कि नहीं बेटा। बैलगाड़ी और रास्ते का मजा अब पुराना हो चला था, और हमको रह रहकर अम्मा की याद आ रही थी। हम तो रोते ही जा रहे थे। हमारी मुंह दिखाई शुरू हुई, हमारे चेहरे को निहारने जाने कितनी औरतें आई, पर कोई बताने वाला ही नहीं था कि ये तुम्हारी अपनी सास है, जेठानी है, चचिया सास है, कौन है। फिर हमको कोई डांटा, नई बहू हो झुक कर प्रणाम करना सीखो। बाप रे, लोगों ने जो जो कहा हम सो सो करते गए। अम्मा भी तो यही सिखा के भेजी थी कि बेटा जो कोई कहे सो ही करना। फिर कहीं से एक छोटा बच्चा लाकर हमारी गोद में रख दिया गया। सोचो बेटा, एक बच्चे के गोद में बच्चा रखा गया था। हमको तो एक खिलौना मिल गया था। हमारे आंसू रुक गए थे और हम उसको प्यार से पुचकारने लगे। लोग काहे खुश थे ये देख के हमको नहीं मालूम, पर हमको कुछ पहचाना सा मिल गया था मन बहलाने को। दिन बिताना कितना मुश्किल होता नए घर में, अगर ये नन्हा सा साथी जो रिश्ते में भतीजा था ना मिलता। रसोई घर में हमारी बुलाहट होती तो कई बार, लेकिन ना हमको आता था कुछ, ना ही मन ही लगता था। हमारे साथ बाबूजी एक ठो नौकर और एक ठो नुकरानी भेजे थे। हम तो रसोई उन्हीं दोनों के हवाले कर दिए। दिन भर भतीजे के लाड दुलार में रगे रहते थे। एक तरह से हमारा बच्चा ही हो गया था। और जानते हो, तुम्हारे दादू को हमारा भोलापन और हमारी खुशी से ही मतलब था, उसी पे मोहे थे वो। इसलिए कभी टोके ही नहीं। दोनों बच्चे एक साथ बड़े होते गए। सारा ससुराल इस रिश्ते को जान और मान गया था। हाँ दादी, बचपन के नाते होते ही इतने मनमोहक हैं। ये रिश्ते फिर जिंदगी भर नहीं टूटते, एकदम अटूट, है ना दादी? अरे बेटा, हमको और तुम्हारे दादू को भी यही यकीन था, लेकिन हमारा भरोसा तब टूटा जब वही भतीजा बैरी हो गया। दादू के जिंदा रहते ही वो पराया होने लगा, लेकिन उनके गुजरते ही तो उसने दुश्मनी ठान ली, जमीन जो ना कराए। हाँ बेटा, भतीजा पट्टीदार हो गया और देखते देखते घर के दो टुकड़े हो गए। हाँ, वही घर जिसे हम बचपन से सजाते आ रहे थे और हमको ही काटने को दौड़ता, हम अकेले ही रह गए। अकेले कितने दिन काटते, कहने को तो हमारे हमें बहुत कुछ मिला, हमारे हिस्से बहुत कुछ आया, लेकिन प्यार नहीं, हमको अंदर तक खोखला कर दिया प्यार का अभाव। एक निवाला भी गले के नीचे नहीं उतरता था, दिन रात दुआ करते थे ऊपर वाले या तो हमको इस तरह घिसट कर जीने की हिम्मत दे या अपने पास बुला ले। अकेले? ऐसा क्यों कह रही हो दादी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, हम बांझ है ना बेटा, पहले कभी बच्चे की कमी महसूस ही नहीं किए, लेकिन दिल का रिश्ता जब टूटता है ना तो बांझ वाली पहचान भी मिल गई। खैर, ऊपर वाले ने दुआ सुनी तो जरूर होगी ना बेटा, तभी तो हम आज भी जिंदा हैं और तुमको ये सब बता पा रहे हैं, है कि नहीं? चलो बेटा, बहुत देर हुई, थक गए हम बोलते बतियाते, थोड़ा आराम कर लेते हैं। जी दादी, ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं फिर आता हूँ। अब मैं दादी को कैसे बताऊं कि ऊपर वाले ने इन्हें त्रिशंकु बना दिया है। पिछले 3 दिनों से मैं इनकी यही कहानी सुन रहा हूँ और वही सवाल दोहराता जाता हूँ। 15-20 दिन पहले इन्हें कुछ लोग यहाँ अस्पताल में छोड़ गए थे, किस्मत से ये बच गई, लेकिन दिमाग की घड़ी कहीं एक जगह अटक गई है। अस्पताल को ये अपना घर समझती हैं और हर आने जाने वाले को अपना परिवार। जब नर्स तक परेशान हो गई तो मुझ एक अदने से ट्रेनी डॉक्टर पर इन्हें संभालने की जिम्मेदारी आ गई। अपनी दादी को तो मैं देख नहीं पाया था, अब इन्हीं में मैं अपनी दादी देखता हूँ और जब मौका मिले इनकी आंचल के छांव में बैठ जाता हूँ। मेरी दवा और इनकी दुआ के भरोसे अब ये नया रिश्ता फल फूल रहा है। कितनी अजीब बात है ना, बड़े बूढ़े हर अजनबी को अपना मान बैठते हैं और हम अपने अपनों से भी दूर हुए जा रहे हैं, घर के बूढ़े बड़ों को भी वक्त नहीं दे पाते। अब जब तक वो यहां हैं, वो मेरी दादी हैं, और जितनी बार भी वो ये कहानी दोहराएंगी उतनी बार इत्मीनान से सुनूंगा, क्योंकि उन्हें मुझसे सिर्फ अपनापन और मेरा थोड़ा सा वक्त ही तो चाहिए ना, और तो कुछ नहीं। धन्यवाद।
हाँ, बहुत खूबसूरत।
इस बार भी मैं विश्व दीपक जी से बोलना चाहूंगी, बिना आपकी अनुमति के मैंने कुछ जोड़ा है तो
नहीं, अगर... जी अनुमति नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, मैं पैरेलल मैंने अपनी कहानी खोल कर रखी हुई थी और मैं मिलाते जा रहा था। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा दर्शकों, श्रोताओं को मालूम नहीं होगा, जितनी भी दादी के डायलॉग्स हैं मैंने पहले मैं में लिखे थे, बाद में दीपिका जी ने शाम में बोला कि उसको हम में करो, तो मैंने केवल नॉर्मल हम में किया था कि हम ये करते हैं, हम ये कर रहे हैं। पूरा जो देसीपन है वो दीपिका जी का अपना है, उन्होंने अभी बोलते समय किया है या लिखा है वो दीपिका जी नहीं जानेंगी, पूरा देसीपन उन्होंने डाला है। दूसरी बात, अंत में जो मैंने केवल रोक दिया था कहानी, यहाँ पे मेरी दवा और उनकी दवा दुआ के सहारे रिश्ता चल रहा है, बाद में पूरी की जो अगली 4 लाइन्स है वो दीपिका जी की हैं।
अभिषेक दीपक जी, यही ये इसी का नाम है कहानी बुनो। कहानियां लिखी जाती हैं और उस पर मशा की जाती हैं, उस पर थोड़ी सी संपादन की जाती हैं, कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं, कुछ चीजें घटाई जाती हैं, रिश्तों के तमाम वजूहात को समझे जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से कहानियां बुनी जाती हैं, इसलिए हमने इस कहानी का, इस प्रोग्राम का नाम कहानी बुनो रखा है। और दीपिका जी, अभिषेक दीपक जी, आपने बहुत खूबसूरत कहानी लगी, और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये अब तक की रिश्तों को लेकर बुनी हुई कहानियों में सबसे बेस्ट है अब तक।
धन्यवाद,
हमारे प्रोग्राम पे इतनी बेहतरीन कहानी पहली बार आई है रिश्तों के लेकर खास तौर से, ठीक है
जी।
और इस कहानी को सुन के मुझे ये लगता है विश्व दीपक जी कि अगर हम एक दो महीने गांव जाकर नानी दादी से कहानियां सुने, चाहे जैसा आपने कहानी में लिखा है कि हम अपने आसपास के बूढ़े बुजुर्गों को देखें, उनसे बात करें, उनसे कहानियां सुने, उनकी बातें सुने, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक संग्रह तैयार हो जाएगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि विश्व दीपक जी में एक बड़ा कहानीकार छुपा हुआ है जो इस तरह की कहानियां लिखने का माहिर हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। हम लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं विश्व दीपक जी, और मैं चाहूंगा कि कुछ और बातें बताएं इससे रिलेटेड।
इस कहानी के पीछे का आप जरा मुझे वो बताइए, इंस्पिरेशन क्या रहा है और कैसे आपने?
जी जरूर। तो पिछली कहानी के वक्त मैंने गांव की कहानियां लिख दी थी, तो मुझे इस बार कुछ नया लिखना था। मेरे ध्यान में जो था वो था गांव में जो बैलगाड़ी में बैठ के दादी आ रही हैं, मेरे ध्यान में बस उतना ही था। और ये भी इससे आया क्योंकि मैं जब अपनी ससुराल गया था तो मेरी वाइफ की जो दादी माँ है वो एक बार ऐसे ही बैठी हुई थी आराम से, कोई मिल नहीं रहा था, तो मुझे कहानी बताने लगी कि ऐसा हुआ बेटा बहुत साल पहले, 60-70 साल पहले की बात है, ऐसा ऐसा हुआ, बैलगाड़ी पे आई, फिर जो गोद में बच्चा दिया गया, ये दो बातें मुझे याद थी। अब मैंने लिखना भी जब शुरू किया था तो मैं यही सोच के लिख रहा था कि मैं आगे चल के लिख दूंगा कि मेरी दादी नहीं है, मेरी पत्नी की दादी है। आधी कहानी आते आते मुझे लगा कि फिर वो उतना मजा नहीं आएगा, फिर वो बात खुल के नहीं आएगी कि क्यों दादी सुना रही है कहानी। तो फिर वहां से कहानी मुड़ गई कि नहीं ठीक है, दादी ये बात रिपीट करती जाती है क्योंकि उन्हें वो वही फंस गई है। और फिर वो बच्चे वाली बात भी जब हुई तो अगर मैं केवल बोलता कि एक बच्चा था और नॉर्मल बच्चा बड़ा हो गया तो भी कुछ वो मोर नहीं आता, जो अभी मनु जी ने भी लिखा है कि कहानी में मोर है, तो
कहानी में ट्विस्ट है। जी
जी हाँ, तो मुझे वही लगा कि ठीक है, कई बार वैसा होता भी है, आप अपने घर भी देखोगे वहां पे आप जो साथ में बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, बड़े होते होते एकाक पटीदार हो जाते हैं। मेरे अपने घर में ही अगर मैं बोलूं, मेरा चचेरा भाई है अब वो पटीदार है, तो वो
सर ये विश्व दीपक सर ये हिंदुस्तान के हर घर की लगभग कहानी है। गांव में तो मैं देखता हूँ कि फौजदारी के मुकदमे इसी वजह से सबसे ज्यादा हैं, जमीन जायदाद को लेकर अपने अपने खून के हम लोग प्यासे हो गए हैं। बहरहाल वो हमारा अभी क्या ही कहूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप कोशिश करिए और ऐसी तमाम कहानियां निकालने की जो थोड़ा इमोशन को टच करें और जहन में जो भी आती जाए या जहां कहीं से भी मिले उसको लिखने की कोशिश कीजिए।
जी, तो मैं वही, मेरी वही बात है क्योंकि मैं लिखता नहीं था, मैंने सजीव जी को मैंने बताया भी था, सजीव जी ने बोला लास्ट टाइम की लिखो, तो अब मेरे ध्यान में वही है कि कुछ जहां तहां इंसिडेंट्स हैं किसी टॉपिक पे उसके अराउंड कुछ लिखा जा सकता है तो लिख लूं ताकि कुछ।
बिल्कुल विश्व दीपक जी, और ये जो आपने पहले लिखी थी ना, सच बताऊं उसमें कुछ इमोशंस नहीं आ रहे थे, जो आपने चेंज कर दिया था उसको मैं और उसमें, तो इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया था कि क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ उस तरह से, तो मुझे लगा कि अगर आपसे बिना पूछे करूं तो क्या पता मतलब कोई ऑब्जेक्शन ना हो, इसलिए मैंने ये बदला इसको और फिर पूछा।
नहीं, मैं और उसका भी कारण मैंने बताया था जो आपको, कि पिछली बार मुझे लगा कि मैंने गांव के ज्यादा शब्द डाल दिए तो कहीं लोगों को ये नहीं लग रहा हो कि समझ ना आ रहा है, इसलिए मैं
नहीं दीपक सर, अब तो हिंदी की फिल्में भी गवई अंदाज में बनने लगी, आप बेफिक्र रहे।
अच्छा वसीम जी, अनुराग जी भी हमारे साथ हैं, तो अनुराग जी अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो
हमारे पास वक्त कम है, टॉपिक बता दे, दो मिनट का।
हाँ जी, लेकिन अनुराग जी आई थिंक सुन नहीं पा रहे हमें या अनम्यूट नहीं कर पा रहे, तो अगले टॉपिक के जी कहिए जी।
हाँ, मुझे दो बातें कहनी थी इसमें, एक तो विश्व दीपक जी पट्टीदार शब्द का बाद में आप अर्थ बता सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें।
पट्टीदार मतलब दो भाई हैं और अगल बगल पड़ोस में रहते हैं, दोनों अलग अलग रह रहे हैं तो वो पट्टीदार हो गए।
ओके, जी, जमीन का हिस्सेदार हो जाना, जो
जमीन के हिस्सेदार जो होते हैं,
बंटवारा हो जाना।
जी
ठीक, हाँ हाँ। तो दीपिका जी कहानी का अगले टॉपिक बता दें प्लीज।
जी अनुराग जी, एक बता दें क्या कहना चाह रहे हैं आधे मिनट में, तो
हाँ
उनकी बात अधूरी रह जाएगी।
हमें सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ विश्व दीपक, अंत बहुत ही सुंदर है, तो जैसे भी तुमने एक घटना से या किसी भी तरह से शुरू किया, लेकिन जो ये ट्विस्ट आया उसमें, उसने वास्तव में इसको एक अच्छी कहानी।
जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग,
आपसे सुनना, जी आपसे सुनना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
जी
जी, तो वसीम जी अगले टॉपिक के लिए मैं सिर्फ गाने की एक लाइन बोलूंगी, तो आप गेस कीजिए कि अगला टॉपिक क्या होगा।
अरे वाह, बताएं।
जी, मैंने पूछा फूल से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, फूल ने कहा नहीं नहीं।
फूलों से बात करना, फूलों से पेड़ पौधों से बात
अरे
करना,
ये भी हो सकता है, वो चांद खिला वो तारे हंसे। बताइए बताइए।
<So funny. laughs>
जी, किसी चीज का मानवीकरण करना, वाकई।
चलिए, तो हमारा ये टॉपिक हो गया कि किसी भी ऐसी चीज का मानवीकरण करना जो हमसे बात ना कर सके लेकिन हम उससे बात करें, या वो हमसे बात करें। अगर आपके पास मोबाइल भी पड़ा हो तो वो भी बात कर रहा हो, फूल हो, टेबल हो,
आपके घर की कोई भी चीज,
घर के आसपास कोई
क्या कहना चाहती है। जी
जी,
तो ये आप अपनी कहानी के रूप में लिखिएगा।
मंडे तक कहानी भेज दे kahanibuno@gmail.com पर। 500 से 700 शब्दों में कहानी होनी चाहिए, इसका बेहद जरूरी तौर पे ख्याल रखें। ठीक है, आप सबका
और विश्व दीपक जी का, अनुराग जी का
बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया, लिसनर्स
रिचा जी का भी शुक्रिया।
अगले हफ्ते मिलते हैं 9 बजे बुधवार को।
थैंक यू।
If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.